Recording in progress.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو جیسا کہ شاید آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہو، اور جو لوگ ریاض میں خود موجود ہیں تو ان کو باہر کی بھی آوازیں آ رہی ہوں گی کہ کس طرح سے بادل گرج رہے ہیں اور آسمان جو ہے وہ برس رہا ہے. تو یعنی ایک تو یہ ہے کہ جی بارشیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آرٹیفیشل جو پانی کی ارینجمنٹ ہے، انڈر گراؤنڈ واٹر ریزرورس تک پہنچنا، یا جو ہے وہ کسی طریقے سے پانی کو ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچانا، ٹھیک ہے، یا یہ کہ جو واٹر ریکلمیشن ہوتی ہے کہ سمندری پانی کو جو ہے وہ ڈیسیلنائز کر کے اس کو ایٹ لیسٹ پودوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دینا، ٹھیک ہے. تو یہ ساری کی ساری طریقے ہیں کہ پانی جو ہے وہ عربین پیننسولا کے اندر جو ہے وہ اب پہنچ چکا ہے، اور ایون جو ڈیزرٹ والے علاقے تھے وہاں تک بھی پانی کی رسائی جو ہے وہ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ان کی پلانٹیشنز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور یعنی یہاں پر ایون ویجیٹیبل گروتھ اور جو ہارویسٹ ہے گرینز کی وغیرہ، یہ سب کچھ بھی بہت زیادہ اب ہو گیا ہے. تو ان ساری باتوں کو پھر ہم اسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی، کہ جس کا جس حدیث مبارکہ کا مفہوم بنتا ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ سرزمین عرب پھر سے لوٹ کر سرسبز نہیں ہو جائے گی. پھر سے لوٹ کر، آدھا یعود کر جائے گی، ٹھیک ہے، کہ پھر سے گرین نہیں ہو جائے گی. تو بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، یعنی بظاہر کا مطلب یہ کہ جو اپیرنٹلی ہمیں ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پروفیسی، یعنی اس یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کے حالات بتائے اپنی حدیثوں کے اندر، تو یہ انہی کی جو ہے نا وہ مینیفیسٹیشن ہو رہی ہے. کوئی اس کے اوپر اگر یہ سمجھ رہا ہو کہ جی یہ تو آرٹیفیشل رینز ہیں یا یہ تو آرٹیفیشل اریگیشن کے میتھڈز ہیں، تو یہ کوئی نیچرل پروسیس کو تھوڑی ہے، تو بھائی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے کہ نبی علیہ السلام نے تو بتایا کہ ایسا ہوگا. اب وہ آرٹیفیشلی ہوگا کہ وہ نیچرلی ہوگا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوئی تھوڑی کہا کہ جی نیچرلی یہ والا عمل ہوگا، آرٹیفیشلی نہیں ہوگا، یہ تو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے. تو چاہے وہ آرٹیفیشل ہو چاہے نیچرل ہو، وہ تو رہا ہے نا کہ سرزمین عرب جو ہے وہ لوٹ کر کے پھر سے سرسبز ہو رہی ہے. بلکہ ان کا تو پلان ہے گورنمنٹ آف سعودی عربیہ کا کہ جی ریاض کو جو ہے نا وہ بالکل ایک لش گرین جیسا ایک پیس آف لینڈ ہوتا ہے نا، ویسا بنانے کا. کچھ تصویریں بھی جو ہیں وہ انہوں نے اپنے بل بورڈز کے اوپر لگائی ہوئی تھیں. بہرحال یہ ساری نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو استعمال کرتے ہوئے، ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ایمان کو جو ہے وہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے نا وہ ہمارے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ ہی ہے. ورنہ یہ تو نہیں ہے کہ قیامت آ جائے گی تو اب ذرا جلدی جلدی کام کرنا شروع کر دو. بھائی کام تو پہلے بھی جلدی جلدی کرنا تھا، کیونکہ قیامت تو ہماری موت ہے انڈیویجول کی. ایک 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 انسان کی جو قیامت ہے وہ تو اس کی موت ہے، وہ تو آج بھی آ سکتی ہے، کل بھی آ سکتی ہے، ابھی بھی آ سکتی ہے، اور 100 سال کے بعد بھی آ سکتی ہے. تو کام جلدی کرنے کا تصور جو ہے نا وہ تو انسان کی موت کے ساتھ ہے، وہ قیامت کے ساتھ نہیں ہے. قیامت تو اگر 200 سال کے بعد آ گئی उसका क्या ताल्लुक है, मेरी जिंदगी कैसे क्या ताल्लुक है, मैंने तो मर जाना है अपनी मौत के साथ ना, फिर उसके बाद जो होता रहे वो नोज क्या होता रहेगा। तो ये जो नबी अलैहिस्सलाम ने हमें निशानियां बताई हैं, ये अपने आप को तैयार करने के लिए, अपने अपने यानी एक तो यकीन को मजबूत करने के लिए, और दूसरा ये भी कि कयामत के करीब जो ईमान से रिलेटेड मामलात पेश आने शुरू होंगे तो उनके बारे में ज्यादा चौकन्ना हो जाना और ज्यादा मुहतात हो जाना, और उनके लिए जो है वो यानी अपने अपने ईमान को उनसे महफूज करने के लिए कोशिशें शुरू कर देना। ठीक है, अब ये जो बारिशों का ज्यादा होना है या सरजमीन अरब जो है वो सरसब्ज हो जाएगी, बजाहिर इसका कोई ईमानी ताल्लुक नजर नहीं आता कि भाई अगर अच्छा ग्रीनरी ज्यादा हो जाएगी तो अब मैं अपने ईमान के ऊपर की हिफाजत के लिए कोई ऐसा खास काम करूं जो कि पहले नहीं करता था। राइट, सरजमीन अरब के अंदर बारिशें होने का और ग्रीन हो जाने का हमारे ईमान से एटलीस्ट बजाहिर कोई ताल्लुक नहीं, हो सकता है कोई हो लेकिन अभी हमें नजर नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन बजाहिर कोई ताल्लुक नहीं है, तो इस वजह से नबी अलैहिस्सलाम ने ये जो पेशन या ये जो प्रोफेसी यानी जो अलामत कयामत बताई ना, तो इसको हम अपने ईमान की मजबूती के लिए इस्तेमाल करेंगे कि हाँ देखो नबी अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल सच बताया। और दूसरी बात ये कि हमारे अकाबरीन ने, मुहद्दिसीन ने नबी अलैहिस्सलाम की बातों को बिल्कुल सही प्रिजर्व किया, बिल्कुल सही उनकी हिफाजत करी। ये भी तो हो सकता था ना कि हाँ नबी अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल सही सही बात फरमा तो दी लेकिन उम्मत ने उन बातों को जो है वो खराब कर दिया, खुर्द बुर्द कर दिया, उनके अंदर उल्टी सीधी बातें शामिल कर दी, जैसे ईसाइयों ने किया, जैसे यहूदियों ने किया, वैसे नाउजुबिल्ला मुसलमान उम्मत के मौलवियों ने भी यही काम किया। नहीं, हम उन हदीसों की जो जो जहूर देख रहे हैं तो ये इस बात की भी गवाही देता है कि मुसलमान उम्मत के जो उलमाए कराम हैं, मौलवी हजरात हैं, मुहद्दिसीन हैं, उन्होंने हदीसों को बिल्कुल सही सही महफूज भी किया है। देखिए, जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था वही हम तक पहुंचा और उसी की जो है ना वो हम ताबीर देख रहे हैं। ठीक है, तो इससे हम बहुत सारे फायदे हासिल कर सकते हैं इन बातों से। किसी को कोई सवाल हो इस टॉपिक के ऊपर तो जरूर से पूछ लीजिए। बाकी जो हमारी बात चल रही थी इस क्लास के अंदर कल, तो उसका थोड़ा सा लुबे लुबा उसका थोड़ा सा बल्कि यानी खुलासा करके फिर हम आगे मारूफ मसाइल पढ़ना शुरू करते हैं कि जो उलमा की मदद करने के बारे में कल बात हो रही थी कि जिनको हम उलमा मानते हैं उनकी बात नहीं हो रही कि जिनको हम उलमा मानते ही नहीं हैं या जिनको जो है ना वो हम एक मिनट क्या मैसेज आया है, जिनको हम उलमा मानते ही नहीं हैं या जो उलमाए बातिल हम जिनको मानते हैं हम उनकी बात नहीं कर रहे, जिनको हम उलमाए हक मानते हैं, जिनके ऊपर हम जो है ना वो काफी ज्यादा भरोसा करते हैं लेकिन हम फिर भी दीन के मामले में उनकी मदद क्यों नहीं कर पाते, असल दीन के मामले में जो असल दीन का काम है, जो दीन की नशर व अशाअत का काम होता है। ठीक है, और दीन की हिफाजत का काम उससे पहले वाला और फिर दीन के नशर अशात वाला काम उसके बाद वाला, तो इनमें क्यों नहीं मदद कर पाते हैं, उसकी रीजंस ये बनती हैं कि हम जो है ना वो अपने उलमा का एतमाद हासिल नहीं कर पा रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने उनके ऊपर तो इतना एतमाद कर लिया कि हमने उनसे अपना दीन सीखना शुरू कर दिया, उनसे जो है वो मसले पूछने शुरू कर दिए, उनसे जो है मसाइल जो है वो डिस्कस करने शुरू कर दिए, लेकिन हम इस काबिल नहीं बन पाते कि वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करके हमें भी अपने इस काम के अंदर शामिल कर सकें। ठीक है, तो वो हम क्यों नहीं एतमाद हासिल कर पाते, क्योंकि हम उनके साथ खड़े नहीं होते, हम उनके साथ जो है ना वो मुखलिस नहीं होते, सच्चे नहीं होते, हम उन्हीं से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, उन्हीं को धोखा देना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, ये एक वजह बताई थी। और दूसरी वजह क्या बताई थी कि हम जो है ना वो कमिटेड नहीं होते, हम फुली कमिटेड नहीं होते, हम जो है ना वो हर वक्त इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, हम कई कश्तियों के अंदर सवार रहते हैं, हम किसी एक के साथ कमिटेड नहीं होते। इस वजह से क्योंकि हम कमिटेड नहीं होते, हम जो है वो अपना पूरा जो है वो यानी अपना आप नहीं दे रहे होते, जिसको हमारे मशायख की जुबान में सुपुर्दगी कहा जाता है, तो इस वजह से फिर वो भी हम पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। ठीक है, और फिर एक और भी वजह बताई थी कि हम उनकी बात को तवज्जो से सुन नहीं रहे होते, हालांकि हम जो है वो बड़ा अकीदत भी रखते हैं, बड़ा जो है वो यानी मशवरे भी करते हैं और पूछते भी हैं, लेकिन जब वो हमें कोई बात कह रहे होते हैं तो हम बड़ी यानी उजलत के अंदर बड़ी तेजी के साथ जो है ना वो उसको पढ़ते हैं, या हम पढ़ते ही नहीं है शायद, बस ऐसे ही बस उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, या ऐसे ही बस जो है वो स्क्रोल अप कर देते हैं, है ना, पढ़ते नहीं है, और पढ़ते भी हैं तो हम गौर से तवज्जो से नहीं पढ़ते कि उसमें उन्होंने हमसे कहा क्या है, क्या चीज वो हमसे मांग रहे हैं, कि क्या चीज हमसे कह रहे हैं करने को। हम ये हमें तवज्जो हमारी कामिल नहीं होती इस तरफ, हम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड और डिफोकस्ड रहते हैं। तो इस वजह से हम चूंकि उनकी बात के ऊपर अमल करके उनको दिखा नहीं रहे होते, तो इस वजह से वो हम पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। भाई इस बंदे को तो हमने एक छोटी सी बात कही थी, ये इसने अभी तक करके नहीं दी, तो इसको कोई बड़ा काम कैसे दे दें, कोई बड़ी जिम्मेदारी इसके कैसे हवाले कर दें, ये तो छोटी सी बात भी जो है वो करने के काबिल नहीं है। ठीक है, तो तवज्जो की जो यानी है ना, यानी लैकिंग जो है ना, वो फिर इस यानी भरोसा का के काबिल ना बनने की एक वजह बन जाती है। ठीक है, और फिर उसके बाद इन सबसे बड़ी वजह एक और भी है, ठीक है, वो ये है जो कि कल की क्लास के अंदर बात नहीं हुई थी, वो ये भी है कि भाई हम जो है ना, बल्कि समझने के इन सारी बातों को इकट्ठा करके और इसके अंदर एक और चीज ऐड करके वो सबब बन जाती है कि हमारे अकाबिर जो है वो हमारे ऊपर भरोसा नहीं कर पाते। ठीक है ना, तो इन सबको समअप करके हम एक चीज कह सकते हैं, जो कि आज इस पहले भी कुछ दफा जो है वो आपके सामने बयान कर चुका है, जो लोग पुराने स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को यकीनन सुन चुके होंगे, याद है कि नहीं ये तो नहीं कह सकते। वो ये कि देखें, जो हमारे मशायख, जो उलमाए कराम जो दीन का काम कर रहे हैं ना, तो ये दीन जो है ये अल्लाह ताला ने हमें किस लिए दिया, ये हमारे मसलों को सॉल्व करने के लिए दिया है ना। दीन जो है वो सोल्यूशन है इंसानियत के तमाम मसाइल का, चाहे वो इनफरादी हो चाहे वो इज्तिमाही हो, तमाम मसाइल का हल क्या है, दीन है। ठीक है, तो अब ये उलमाए कराम और मशाइख जो काम कर रहे हैं ना, ये काम कर रहे हैं सोल्यूशन सोल्यूशन बताने का, ठीक है ना, लोगों को सोल्यूशन की तरफ गाइड करने का। ठीक है, तो जब हम इस काबिल अपने आप को बनाएंगे ना कि वो हमारे ऊपर भरोसा करके हमें भी अपने काम के अंदर शामिल कर सकें, तो इसको ये कहा जाएगा कि नाउ वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, है ना, वी आर अमंग द सोल्यूशन गिवर्स। ठीक है ना, मसलों का हल देने वालों में अब हम शामिल हो गए। लेकिन जब तक हम उस भरोसे के काबिल नहीं बनते हैं ना, ठीक है, जब तक हम ये वाली हरकतें करते रहते हैं, झूठ बोलना, फरेब देना उनको, है ना, और उनकी बात तवज्जो से नहीं सुनना, या जो है वो मल्टीपल कश्तियों में सवार रहना जो है, और डिफोकस रहना, ये सारे जब तक हम मसले करते रहते हैं, ठीक है ना, या ये कि हम जो है वो उनकी बात सुन करके अपने गुनाहों को छोड़ नहीं रहे होते, अपनी बुरी आदतों को तर्क नहीं कर रहे होते। मिसाल के तौर पर हमारी एक बहुत बुरी आदत है कि अपने आप को जो है ना वो बस हमेशा हक पर समझना, अपने आप को हमेशा हक पर समझना और अगले बंदे को जो है ना वो कसूरवार समझना, ठीक है ना, विदाउट दलील। हमारे पास कोई पक्की दलील नहीं होती, हमने अपने दिमाग के अंदर जो है ना वो ये कुकअप करी हुई होती हैं दलीलें अपने हक होने की और दूसरे के गलत होने की, हमारे दिमाग की इख्तराआत होती हैं ये। ठीक है कि हम हक पर हैं और दूसरा जो है वो गलती पर है, इसी वजह से हम जो है ना वो हर वक्त जो है वो अगले बंदे की बुराई, अगले बंदे की कंप्लेन, ठीक है, हर वक्त कंप्लेन, हर वक्त कंप्लेन, हर वक्त शिकवा, हर वक्त शिकायत दूसरे की, और अपनी हर वक्त तारीफ, अपनी तारीफ, अपनी तारीफ, मैं मेरी क्या बात है भाई, मैं तो बस हमेशा ऐसा करती हूं, और मैं तो हमेशा बस जो है ना बस मैं तो बस मुखलिस ही हूं। ठीक है, मैं मुझसे बड़ा एज इफ के मुझसे बड़ा मुखलिस दुनिया में कभी कोई पैदा ही नहीं हुआ था, मैं इतनी ज्यादा मुखलिस हूँ, है ना। और मर्द जो है वो, चूंकि मर्द शायद अब क्लास में ज्यादा नहीं होंगे, वर्किंग डे शुरू हो चुके हैं, तो अब खवातीन ज्यादा हैं क्लास में, तो मुझसे ज्यादा तो इखलास वाला कोई हो ही नहीं सकता, बस मैं जो करती हूँ बस सही करती हूँ, अच्छा ही करती हूँ, है ना, और बस क्या अल्फाज नहीं है मेरे पास अपनी तारीफ बयान करने के लिए। ठीक है, तो अपनी तारीफ और दूसरे की शिकायत, दूसरे की शिकवत, चाहे वो शौहर की शिकवत शिकवा हो, चाहे वो जो है वो शौहर बीवी का शिकवा कर रहा हो, चाहे जो है वो अवामुन्नास जो है वो हुकूमत का शिकवा कर रही हो, चाहे जो है वो किसी और का शिकवा कर रहे हो, अपने अलावा किसी हर एक का शिकवा। ठीक है, तो ये जो हमारी बुरी आदतें हैं ना, जब तक हम इन बुरी आदतों को नहीं छोड़ते, और जब तक हम इसके अलावा जो अपने गुनाह हैं ठीक है ना, उन गुनाहों को नहीं छोड़ते ना, तो उस वक्त तक जो है वी रिमेन पार्ट ऑफ द व्हाट, ये लफ्ज अगर आप बता दें, वी रिमेन पार्ट ऑफ द, किस चीज का हम हिस्सा रहते हैं उस वक्त तक, पार्ट ऑफ द सोल्यूशन तो आपको बता दिया ना, ठीक है, कि पार्ट ऑफ द सोल्यूशन तो नहीं बन सकते, तो व्हाट डू वी रिमेन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, हम प्रॉब्लम का हिस्सा बने रहते हैं, ठीक है, तो हम जब तक खुद प्रॉब्लम का हिस्सा बनना नहीं खत्म करेंगे, जब तक हम खुद जो है वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, तो उस वक्त तक हम पार्ट ऑफ द सोल्यूशन नहीं बन सकते, हम पार्ट ऑफ द सोल्यूशन नहीं बन सकते, ठीक है। तो उन्होंने जो हमें बातें बताई हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि अपनी जिद को छोड़ दो, अपनी अनानियत को छोड़ दो, घरों के अंदर झगड़े करना छोड़ दो, हर वक्त शौहर की कंप्लेन करना या हर वक्त बीवी की कंप्लेन करना और अपने आप को हमेशा हक पर समझना, ठीक है ना, ये तुम छोड़ दो इस वाली हरकत को, इन बुराइयों को, इन 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 बेवकूफियों को तुम छोड़ दो, तुम अपने आप को अकलमंद समझ रहे होते हो, लेकिन जब कोई इल्म वाला, दलील वाला तुम्हारी बात सुनते हैं ना, उसको समझ में आ जाता है कि ये बिल्कुल बेदलील बात कर रही है, ये अपनी जो तारीफें कर रही है ना, बगैर दलील के जो है ना, वो अपनी तारीफें करी चली जा रही है और दूसरे की बुराइयां करी चले जा रही है, हालांकि ऐसा है नहीं, ठीक है ना। तो अब जब वो आपको देख रहे हैं कि ये तो इस किस्म की मोहलिक रूहानी मर्ज का शिकार है, तो अब वो आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपको पार्ट ऑफ द सोल्यूशन कैसे बनाएंगे, राइट, आपको पार्ट ऑफ द सोल्यूशन कैसे बनाएंगे, आपको अपने दीन के जो तबलीग दीन का असल काम है, राइट, असल काम जो इंसान के ऊपर, मुसलमान के ऊपर अल्लाह ताला ने डाला है, वो तबलीग दीन का काम है। मैं तबलीग जमात की बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं तबलीगी जमात की बात नहीं कर रहा, वो एक शक्ल है तबलीग दीन की, बल्कि असल में वो तबलीग दीन की भी एक शक्ल नहीं है, वो एक इस्लाही मेहनत की एक शक्ल है, ठीक है, जो कि यानी इंसानों की अपनी इस्लाह, जो कि वो तबलीग के रास्ते पे निकलते हैं, उनकी अपनी इस्लाह का एक तरीका है वो, ठीक है, लेकिन जो असल काम है नबियों वाला काम, वो तबलीग दीन का काम है, ठीक है। तो उस तबलीग दीन की मेहनत में उस वक्त तक वो आपको ट्रस्ट नहीं कर सकते जब तक कि वो ये ना देखें कि आप उनकी बात मान करके अपनी इन गंदी आदतों को तर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो हम पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन बनने के लिए, ठीक है ना, वो पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन क्या है, वह मैं सुरू, ठीक है, जो अल्लाह की मदद करता है, व्हाट इज दिस, दिस इज बीइंग पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, दिस इज बीइंग पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, मैं यंसुरुहू, अल्लाह की मदद करना क्या मतलब, अल्लाह के दीन की मदद करना क्या मतलब, अल्लाह के दीन के उलमा मशायख की मदद करना, दिस इज कॉल्ड पार्ट ऑफ द सोल्यूशन बनना, ठीक है। और जब हम पार्ट ऑफ द सोल्यूशन बनेंगे तो अल्लाह ताला का क्या वादा है, ठीक है, अल्लाह ताला का क्या वादा है, वला यंसुरनल्लाह, वला यंसुरनल्लाह, जरूर बिल जरूर अल्लाह ताला उनकी मदद करेगा, ठीक है भाई, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, यहां पर किसी ने सवाल लिखा है, तबलीग दीन का काम भी दूसरों को दावत देना है ना, तबलीग दीन का काम भी दूसरों को दावत देना है ना, जी, तबलीग दीन का मतलब यही होता है कि दूसरों तक दीन की बात को पहुंचाना, ठीक है, लेकिन आप जिस तबलीग दीन की बात करेंगे ना, मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि आपको तो हम जानते हैं 1 साल से, ठीक है, तो वो आप जिस तबलीग दीन की बात करें वो है खुद से करना तबलीग दीन, जो आपको समझ में आए वो आपने तबलीग दीन करनी है, ये नहीं है तबलीग दीन, ये तबलीग दीन ये नफ्स परस्ती कहलाती है, ठीक है ना। तबलीग दीन का काम तो ये होता है कि जो आपको कहा जा रहा है तबलीग करने के लिए वो आप तबलीग करें, वैसे आप तबलीग करें, अपनी मन मर्जी से और अपनी नफ्स परस्ती की वजह से और अपने शौक की वजह से फॉरवर्ड करते रहना और फेसबुक बनाते रहना और ट्विटर करते रहना और फलाने ढिमकाने उल्टे सीधे हरकतें करते रहना, ये तबलीग दीन नहीं है, ये तबलीग दीन नहीं है, ठीक है ना। लेट दिस बी वेरी क्लियर। अच्छा, अब आगे चलते हैं मारूफ मसाइल पढ़ना, के फरमाते हैं के कुफार के साथ जिहाद का पहला हुक्म, ठीक है, मक्का मुकरमा में क्या लिखती है आपने, हेयर अल्लाह मदद इज रिलेटेड टू दुनियावी मैटर्स, एज वेल। देखें, दुनियावी मैटर्स और दीनी मैटर्स जो होते हैं ना, वो तो हमारी अपनी बनाई हुई एक एक तफरीक है, ठीक है। मोमिन का तो, मोमिन की तो दुनिया भी दीन ही होता है, मोमिन की तो दुनिया भी दीन ही होता है। मोमिन का माल भी दीन है, मोमिन का की औलाद भी दीन है, मोमिन की सवारी भी दीन है, मोमिन का घर भी दीन है, ठीक है। तो हकीकत तो ये है कि देर इज नो डिफरेंस, देर इज नो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर, या कुछ नहीं है इन दोनों के दरमियान फर्क, ठीक है ना। तो अल्लाह की मदद जब मोमिन के साथ होगी ना, तो मोमिन के बजाहिर जो दीनी मामलात होते हैं उनमें भी उसकी मदद होगी, और जो बजाहिर जिनको हमने दुनियावी मामलात समझा हुआ है उनमें भी उसकी मदद होगी, ठीक है ना। यानी क्या है ये फर्क, क्या है, क्या नमाजों में अल्लाह ताला मदद करते हैं उसकी, जिसको हमने दीन समझा हुआ है, नमाजें पढ़ना है ना, तो नमाजों में मदद होती है उसकी, उसका वजू जो है ना वो जल्दी नहीं टूटता, ठीक है ना। और क्या दुनिया में उसकी मदद नहीं होती, क्या मतलब उसका बच्चा जो है वो जो हर वक्त उसको चिल्ला चिल्ला करके नमाज नहीं पढ़ने दे रहा, तो अब ये बच्चा जो है वो बच्चे के मामले में अल्लाह ताला उसकी मदद नहीं करेंगे, है ना। बस जो है वो नमाज के वजू के अंदर उसकी मदद करेंगे, जो कि दीन है हमारे ख्याल में, और बच्चा जो कि दुनिया है, तो बच्चे के मामले में हमारी मदद नहीं करेंगे। या बिजनेस जो है वो दुनिया है, ठीक है ना, तो बिजनेस में हमारी मदद नहीं करेंगे, क्या मतलब बिजनेस के अंदर हर वक्त जो है ना वो एक मुसीबत आती रहेगी, हर वक्त जो है वो हम बिजनेस की वजह से जो है वो उसके अंदर यानी कॉट अप रहेंगे, हर वक्त उसके अंदर एंगेज रहेंगे, तो फिर भाई हम मतलब जिसको हम दीन समझते हैं उसके लिए हमारे पास वक्त कहाँ कहाँ से रहेगा, ठीक है ना। तो इस वजह से ना फर्क कोई नहीं है, मोमिन का तो सब कुछ दीन है, और अल्लाह ताला फिर उसके सब कुछ के अंदर मदद कर रहे होते हैं। मारूफ मसाइल में फरमाते हैं कि कुफार के साथ जिहाद का पहला हुक्म, मक्का मुकरमा में मुसलमानों पर कुफार के मजालिम का ये हाल था कि कोई दिन खाली नहीं जाता था कि कोई मुसलमान उसके उनके दस्ते सितम से जख्मी और चोट खाया हुआ ना आता हो, ठीक है। यानी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर हम बगौर मुताला करें, या कम से कम किसी ऐसी मेहनत का हिस्सा बन जाएं जहां पर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी हम तफसील से जो है वो उसको स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो हमारे सामने जो है ना वो ये ऐसी ऐसी बातें खुल करके आती हैं, यानी नबी अलैहि सलाम के बारे में खाली नहीं आती बल्कि अपने बारे में भी खुल करके आती हैं, क्योंकि नबी अलैहि सलाम की जो जिंदगी है, नबी अलैहि सलाम का जो पूरा 3D है ना, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ नबी अलैहि सलाम लाइफ, एवरीथिंग अबाउट नबी अलैहि सलाम, जिसके अंदर सहाबा भी शामिल है, ठीक है ना, नबी अलैहि सलाम के सहाबी जो हैं वो नबी अलैहि सलाम की इस जिंदगी का लाजमी जुज है, सीरत का लाजमी जुज है, ठीक है। तो अगर हम सीरत को अच्छी तरीके से समझने की मेहनत करें ना, तो फिर वो हमारे लिए एक खुली यानी गाइडलाइन बन जाएगी, खुली गाइडलाइन, साफ सुथरी, ठीक है ना। क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाही उस्वतुन हसना, है ना, कि तहकीक तुम्हारे लिए नबी अलैहि सलाम में, फी रसूलिल्लाही का मतलब क्या, नबी अलैहि सलाम के जिस्म मुबारक के अंदर की बात हो रही है, नहीं, नबी अलैहि सलाम की जिस्म मुबारक के अंदर नहीं, फी रसूलिल्लाही का मतलब क्या है, नहीं बल्कि फी आमाले रसूलिल्लाही, फी अफआले रसूलिल्लाही, फी अहवाले रसूलिल्लाही, फी अय्यामे रसूलिल्लाही, नबी अलैहि सलाम से रिलेटेड हर चीज जो है ना उसके अंदर तुम्हारे लिए उसवाए हसना है, एक मॉडल है दैट यू आर सपोज टू फॉलो, यू आर सपोज टू टेक योर गाइडेंस फ्रॉम, है ना। अब हमें पता ही नहीं कि मॉडल है क्या, मॉडल की तफसीलात क्या है, मॉडल के ऊपर नीचे आगे पीछे आगे क्या है, हमें पता ही नहीं, तो भाई क्या कैसे हमने गाइडेंस लेनी है उस मॉडल से, है ना। तो सीरत की जो 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 तहकीकी स्टडी है ना, इसके बगैर एक मोमिन बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि अंधेरे में टामक टोइयां मारने वाला, अंधेरे में टामक टोइयां मारने वाला, जिसको कुछ समझ में नहीं आता, रास्ता दिखाई नहीं देता उसको कि मुझे जाना किधर है ना। तो कुरान और नबी अलैहिस्सलाम ये दोनों मिल करके हमारे लिए जो है ना वो मॉडल बनते हैं, क्योंकि ये फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना ये किधर है लिखा हुआ, किसने बताया हमें ये बात, कुरान ने बताई ना, तो कुरान से हमें ये बात पता चल गई कि मॉडल हमारा किधर है, नबी अलैहिस्सलाम में, और फिर उसके बाद उस मॉडल की तफसीलात हमें कुरान में सारी की सारी नहीं मिलेंगी, हाँ थोड़ी बहुत उस मॉडल की इंडिकेशंस कुरान मजीद में हमें मिलेंगी, ठीक है, कुछ वाकयात मिलेंगे, लेकिन डिटेल तफसील कहाँ मिलेगी? हदीस मुबारका जिसको के उलमाए कराम ने कंपाइल करके सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा एक साइंस बना दिया है। ठीक है, तो एक मोमिन हो जो कि इन दोनों चीजों से हट करके पता नहीं किसी तीसरी चौथी चीज के अंदर रिसर्च कर रहा है, जैसे कुछ भी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, या कंप्यूटर साइंस हो, या जो है वो ब्रिटिश लॉ हो, कोई भी चीज हो, तो उस मुसलमान की क्या है हकीकत होगी, क्या हैसियत होगी उसकी? टामक टोइयां मारने वाला मुसलमान, अंधेरे में टटोलने वाला, रास्ता टटोलने में अपनी जिंदगी गुजार देने वाला मुसलमान, दैट्स व्हाट ही इज और शी इज, है ना, जो कि इन दोनों सोर्सेस को छोड़ करके बाकी चीजों को रिसर्च करता रहता है, सारी जिंदगी उसी के अंदर लगा रहता है ना, और चलो खुद रिसर्च ना करो, डायरेक्टली रिसर्च ना करो, लेकिन जिन्होंने रिसर्च करी हुई है उनके साथ कम से कम अपना एक ताल्लुक तो बनाओ ना, पूछने वाला ताल्लुक तो बनाओ ना, राइट। ये पहला दर्जा है कि खुद रिसर्च करो, अगर खुद नहीं कर सकते, दूसरा दर्जा भी अवेलेबल है, फसअलु अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुम खुद रिसर्च नहीं कर सके तो जिनके पास जिक्र है, क्या मतलब जिनके पास इल्म है इन सोर्सेस का, उनके साथ अपना एक पूछने वाला ताल्लुक बनाओ, उनके साथ नत्थी होकर के अपनी जिंदगी गुजारो, ठीक है ना। जिस मुसलमान ने ये दोनों काम नहीं किए, व्हाट इज ही और शी केपेबल ऑफ? नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। ठीक है, अब जिसने ये सारे रिसर्च किए हैं तो व्हाट इज ही और शी केपेबल ऑफ? गाइडिंग, गाइडेंस, गाइडेंस देना, है ना, उसी ने तो गाइडेंस देनी है, कुरान और सुन्नत के की चीजों को जो उसने समझा है तो उसने बाद में गाइडेंस देनी है लोगों को, ठीक है ना। तो अब हम उस गाइडेंस देने वाले के ऊपर एतमाद ही नहीं करते, हम उसे जो है वो पूछना ही नहीं चाहते, या जो है वो हम उसके साथ कमिटेड ही नहीं होना चाहते, या हम उससे जो है वो उल्टा झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। तो फिर ऐसा शख्स भी जो कि किसी ऐसे बंदे के साथ जुड़ा हुआ है लेकिन उसके साथ कमिटेड नहीं है, तो वो भी फिर ऐसा ही है जैसे कि चले पिच डार्क के अंदर वो नहीं है, पिच डार्क के अंदर तो वो नहीं है, बिल्कुल गहरी तारीकी के अंदर तो वो नहीं है, लेकिन वो भी जो है ना बस ऐसा ही है कि जैसे कि अंधेरा भी है और जो है वो हाथ भी है लेकिन ये पकड़ने नहीं चाहता, ये हाथ भी नहीं, ये गाइडेंस जो है वो हासिल ही नहीं करना चाहता, हालांकि सामने गाइडेंस मौजूद है, इसके नजर आ रहा है इसको गाइडेंस, लेकिन फिर भी ये जो है वो अपने आप को उससे दूर दूर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो इन अ वे ये तो ज्यादा यानी मुश्किल वाली सूरत हाल के अंदर हो गया। एनीवे चले आगे चलते हैं। तो क़याम मक्का के आखिरी दौर में मुसलमानों की तादाद भी खासी हो चुकी थी, क्या खासी हो चुकी थी, 100 से चंद थोड़ा बहुत ज्यादा हो चुकी थी मुसलमानों की तादाद, 100 भी वैसे एक सिग्निफिकेंट नंबर होता है, 2-3 के मुकाबले में 100 तो बहुत ज्यादा होता है ना, तो खासी तादाद हो चुकी थी। वो कुफार के जुल्म व जौर की शिकायत और उनके मुकाबले में कत्ल व क़िताल की इजाजत मांगते थे, ठीक है, इजाजत मांगते थे। इजाजत मांगना ये एक अलग चीज होती है, क्या मतलब कि जिससे आप इजाजत मांग रहे हैं आपको आप उसको इस काबिल समझते हैं कि वो इजाजत देगा तब मेरे लिए ये चीज फायदेमंद होगी, और अगर वो मुझे इजाजत नहीं दे रहा तो उसकी इजाजत के बगैर अगर मैं ये काम करूंगा तो मेरे लिए नुकसानदेह होगी। ठीक है, तो इजाजत मांगने का तो मतलब कॉन्सेप्ट यही होता है। आज के दौर के अंदर हमारे मुसीबत क्या पड़ी हुई है, हमारे हमारे जो अकल परस्ती और हमारी नफ्स परस्ती जो हर यानी हदूद क्रॉस कर चुकी है, हम उलमा से इजाजत नहीं मांगते, ठीक है ना, बल्कि हम उलमा को बुरा भला कहना और तनकीद करना कि कोई ये क्यों नहीं इजाजत दे रहे, ये क्यों नहीं इजाजत दे रहे, या ये क्यों जो है वो खुद जिहाद शुरू नहीं कर रहे, और ये क्यों जो है वो खुद जो है वो जालिम के साथ खड़े हुए, यानी इस हद तक आगे बढ़ जाते हैं कि उनको जो है ना वो हम जालिम के साथ खड़ा कहना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, ये हमारी अटर जहालत से ज्यादा इसकी और कोई हैसियत नहीं है। ठीक है, तो सहाबा कराम की ये जो इजाजत मांगना है ना, इसको हम अपने ऊपर कयास ना करें कि हम भी तो इजाजत ही मांग रहे हैं, हम कोई इजाजत नहीं मांग रहे, हम तो उल्टा तनकीद कर रहे हैं, हम तो क्रिटिसाइज बल्कि हम तो उल्टा ब्लेम करना शुरू हो गए उलमाए कराम को कि जी ये जो है वो जुल्म का साथ दे रहे हैं और मजलूम का साथ नहीं दे रहे हैं और फलाना और ढिमकाना, जो हम जो है ना वो टॉक शोज के अंदर और अखबार के अंदर जो पढ़ते हैं ना, वही जो है वो हम आगे बोलना शुरू कर देते हैं उसको। ठीक है, इल्म हमारे पास है नहीं, ना अकल है ना कुछ है, और बस हम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में फरमाते कि सबर करो, मुझे अभी तक किताल की इजाजत नहीं दी गई है, ठीक है ना, मुझे ऊपर से किताल की इजाजत मिलेगी तब मैं तुम्हें किताल की इजाजत दूंगा, अभी मैं तुम्हें अपनी तरफ से इजाजत नहीं दे सकता। नबी का ताल्लुक भी अपने शेख के साथ था अल्हम्दुलिल्लाह, राइट, पक्का पक्की निस्बत थी अपने शेख के साथ, ठीक है। तो शेख कौन होता है नबी का? नबी का शेख सिर्फ अल्लाह होता है, क्योंकि कोई इंसान जो है ना वो नबी का शेख नहीं हो सकता। किसी जिन के अंदर तो वैसी कोई हैसियत नहीं, जिन तो वैसे इंसानों से नीचे दर्जे की मखलूक है, ठीक है ना, और फरिश्ते जो हैं वो ये वाला काम करने के अहल नहीं है। फरिश्तों का काम तो बस जो दिया एज इट इज आगे कर देना है, बस और कुछ नहीं करना, बीच में अपनी कोई लॉजिक अपनी अकल वगैरह इस्तेमाल नहीं करना। तो इस वजह से नबी का डायरेक्ट जो है ना वो ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ होता है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिर्फ जो है वो कम्युनिकेशन मीडियम होते हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो ये सिलसिला 10 साल तक इसी तरीके से जारी रहा, ठीक है। ये हजरत ने कुर्तुबी अन इब्न अरबी से नकल किया है, तफसीर कुर्तुबी। अच्छा, जिस वक्त रसूल 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 करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतन मक्का छोड़ने और हिजरत करने पर मजबूर कर दिए गए, और सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके रफीक थे, तो मक्का मुकरमा से निकलते वक्त आपकी जुबान से निकला, अखरजू नबीयहुम लयहलकुन्ना, ठीक है। अच्छा, 10 साल के ऊपर कोई कंफ्यूज ना हो कि जी मक्का मुकरमा की जिंदगी तो 13 साल की थी, और 13 साल तक जो है वो लड़ाई की इजाजत नहीं थी, किताल की इजाजत नहीं थी। तो पहले भी हम बता चुके हैं कि शुरू के जो 3 साल थे ना वो तो फतरतुल वही के साल थे, जिसमें कि नबी अलैहिस्सलाम को जो है वो सिर्फ एक वही दे दी गई थी और बस तबलीग की इजाजत नहीं हुई। तबलीग की इजाजत तो हुई बाद में जा करके थी, ठीक है, और उसके बाद फिर ये जुल्म सितम वगैरह शुरू हुआ था। हाउ विल आवर मोनोथियज्म एंड सेल्फिशनेस, मोनोथियज्म एंड सेल्फिशनेस एंड, हाउ विल आवर मोनोथियज्म, मोनोथियज्म का जो लफ्ज है ये माशाल्लाह आपने किधर से लिया है? एथियज्म और मोनोथियज्म, मोनोथियज्म का लफ्ज जो हमने पढ़ा था उसका तो मतलब था जी तौहीद, ठीक है। तो अब ये तौहीद और मोनोथियज्म तो अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होता है कि अल्लाह इज ओनली वन, ठीक है। हाँ, अगर अपने आप को खुदा समझ रहे हैं, जो कि असल में नफ्स यही चाहता है कि हम अपने आप को खुदा समझें, अना रब्बुकुमुल आला, तो इस लिहाज से मोनोथियज्म जो है वो अपने लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सेल्फिशनेस जो है, सेल्फिशनेस थोड़ा सा एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट इसके अंदर है कि यानी किसी दूसरे की परवाह ना करना और सिर्फ अपनी परवाह करना, ठीक है ना, ये ईसार का ऑपोजिट है, ठीक है। तो बहरहाल आपका सवाल का मकसद जो है ना वो यही है कि भाई हम अल्लाह ताला से दुआ करें सबसे पहले, हाउ विल इट एंड, तो इसके लिए सबसे पहले दुआ कि अल्लाह मेरी सेल्फिशनेस और मोनोथियज्म जिसको आप कह रही हैं वो खत्म हो जाए, ठीक है। अल्लाह आप मेरी मदद फरमा दीजिए, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे इसको खत्म करूं, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किस कहाँ सर मारूं, किससे क्या करूं, आप बता दीजिए, आप करवा दीजिए, है ना। तो इसको अपना मकसूद बना करके मांगना है ना, और यानी अल्लाह ताला के साथ खिलवाड़ नहीं करना, बल्कि वाकई मांगना कि अल्लाह को पता लग जाए कि हाँ ये चाहती है, वाकई ये चाहती है, ये ऐसी मुझसे ड्रामे नहीं कर रही है, ठीक है। और फिर उसके बाद दवा में लग जाना, दवा जो है वो हमारे मशाइख के पास अल्लाह ताला ने दी हुई है, जिसके ऊपर बात हो चुकी है कि भाई वो डॉक्टर है, ठीक है, तो डॉक्टर जो है वो जो बता रहे हैं उसको करना ना, हम नहीं करते ना, हम ये उल्टी सीधी वाली हरकतें करना शुरू हो जाते हैं ना, जिसके बारे में कल तफसील से बात हुई है और आज जो है वो शुरू के 15 मिनट हमने दोबारा उसको रिपीट किया है, ये वाली हरकतें छोड़ देना जिसको हम नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। उसी तरह से खत्म हो गई, बाकी ये कि आप जाकर के वो डेड सी के अंदर गोता लगा करके आ जाए, जिससे कि आपके स्किन डिजीजेस खत्म हो जाती हैं, तो आपकी ये वाली रूहानी डिजीजेस भी खत्म हो जाएंगी डेड सी के अंदर जाके गोता लगाने से, तो नहीं भाई हमने तो नहीं देखा कभी इस तरह से रूहानी बीमारियां खत्म होती हैं। बहरहाल, तो जिस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतन मक्का छोड़ने और हिजरत करने पर मजबूर कर दिए गए, और सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके रफीक थे, तो मक्का मुकरमा से निकलते वक्त आपकी जुबान से निकला, अखरजू नबीयहुम, इन लोगों ने अपने नबी को निकाल दिया है, ठीक है ना, उसको खारिज कर दिया है, तो लयाह लकुन्ना, या लुकुन्ना है या या लकुन्ना है, यानी जरूर बिल जरूर, फिर वही लामे ताकीद बानून सकीला, बानून सकीला वाला सीगा कि जरूर बिल जरूर ये लोग अब हलाक हो जाएंगे। ठीक है, अब उनकी हलाकत का वक्त आ गया है जैसे हजरत ने यहाँ पे लिखा है। तो उस पर मदीना तैयबा पहुंचने के बाद ये आयत मज़कूरा नाजिल हुई कि जिसमें मुसलमानों को कुफार से कताल की इजाजत दे दी गई है। क्या मतलब? उज़ना लिल्लज़ीना युकातलून बिअन्नहुम ज़ुलम। ठीक है, ये वाली आयत नाजिल हुई, मजबूर कर दिए गए नबी अलैहिस्सलाम। तो इसके ऊपर पहले भी कई दफा बात हो चुकी है, तो इस वजह से हम आगे बढ़ते हैं कि मजबूर मजबूर नहीं किए गए थे, बल्कि असल में नबी अलैहिस्सलाम को उनके काम से रोक दिया गया था जिसके बगैर वो जिंदा रहने का तसव्वुर नहीं कर सकते थे। तो इस वजह से नबी अलैहिस्सलाम ने अपने काम को जो है वो तरजीह दी, और जिन चीजों से आपस वसलम को मोहब्बत थी, तबीयी मोहब्बत थी, घर था उससे मोहब्बत थी, शहर था उससे मोहब्बत थी, गली कूचों से मोहब्बत होती है, और हत्ता के काबतुल्ला से मोहब्बत, काबतुल्ला से नबी अलैहिस्सलाम को कितनी मोहब्बत थी, और काबतुल्ला दीन की एक चीज थी, है ना, अल्लाह का घर है। ठीक है, लेकिन अल्लाह का हुक्म अल्लाह के घर के साथ मोहब्बत पर भी फौकियत पा जाता है। ये बात बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये अल्लाह के घर के साथ मोहब्बत, ठीक है, अल्लाह के हुक्म के ऊपर उसकी भी हैसियत कम हो जाती है। और जिस तरह अल्लाह के घर से मोहब्बत है ना, उसी तरह अल्लाह के किसी बंदे के साथ मोहब्बत भी। ठीक है भाई, अल्लाह के बंदे से बड़ी मोहब्बत है, वो मुझे बस वो मुझे उनसे उनसे मिलना है, अल्लाह की मोहब्बत की बात है भाई। जब हुक्म आ गया कि नहीं अभी आप नहीं मिल सकते नबी, नहीं अभी आपने आपके ऊपर दूसरा हुक्म, वो फर्ज है आपके ऊपर, और अल्लाह के उस वली से मिलने कि जो आपके अंदर की चाहत है, जो कि अल्लाह ही की खातिर है और अल्लाह के वली हैं, और अल्लाह के वली के साथ जो है वो वक्त गुजारना जो है वो अल्लाह के कुर्ब का सबब बनता है, ये सारी बुकरातियां आप साइड पे करें। जब आपको हुक्म दिया जा रहा है कि नहीं अभी आप अपने घर पे रहें, आप उस वली से मिलने मत जाएं, ठीक है, या आप अपने घर पे रहें, आप अल्लाह के घर की मोहब्बत की वजह से अल्लाह के घर मत जाएं, तो उस वक्त घर पे रहना जो है वो ज्यादा ज्यादा क्या वही वही काम करना होगा, घर पे रहना, घर पे रहना। ठीक है, तो सिर्फ ये तभी मोहब्बत के ऊपर नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम को घर से तभी मोहब्बत थी और मक्का मुकर्रमा के शहर से तभी मोहब्बत थी, जैसे कि हर एक को अपने वतन से मोहब्बत होती है जहां पे वो पला बड़ा होता है और वगैरह वगैरह, है ना। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जो है वो दीन इस्लाम को जो है ना वो मक्का मुकर्रमा की तबी मोहब्बत के ऊपर तरजीह दे दी। नहीं, इट्स नॉट दैट सिंपल, क्योंकि मक्का मुकर्रमा जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के सिर्फ वतन नहीं था, मक्का मुकर्रमा अल्लाह के घर का मुकाम भी है, अल्लाह के घर का मुकाम। और नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह के घर से सबसे ज्यादा मोहब्बत थी, सिर्फ अपने घर से मोहब्बत नहीं थी, सिर्फ गली कूचों से मोहब्बत नहीं थी, बल्कि अल्लाह के घर से सबसे ज्यादा मोहब्बत थी। जब गारे हेरा के अंदर जा करके मेडिटेट किया करते थे, राइट, तो उस वक्त भी ऐसी जगह पे बैठा करते थे कि अल्लाह का घर नजरों से ओझल ना हो, है ना भाई। पहाड़ के ऊपर बैठ रहा है, किसी जंगल बेआबान में बैठना है जहां पे बैठ के आपको अल्लाह को याद करना है, तो पहाड़ तो बहुत है। जबले अबी कुबैस जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के घर से ज्यादा करीब था, मक्का मुकर्रमा पहाड़ियों से घिरा हुआ है, हर तरफ पहाड़ी पहाड़, भाई तन्हाई चाहिए थी ना, किसी पहाड़ पे चले जाते। ये गारे हिरा के अंदर जाकर के क्यों बैठते थे, है ना। गारे हिरा देखे ना, जो मक्का मुकरमा गए हैं रियाज के लिए, जब बाहर निकल रहे होते हैं ना, तो गारे हिरा वो जबले नूर जो है वो सबसे आखिर में आता है, फिर उसके बाद मक्का मुकरमा का शहर खत्म हो जाता है तकरीबन। इतना दूर आकर के क्यों बैठते थे, क्योंकि वही एक वाहिद पहाड़ था, शायद कोई ऐसा गार वहीं पर था, और कहीं पर ऐसा गार कोई ऐसी ऐसी जगह नहीं थी जहां पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा यानी कवर्ड एरिया के अंदर बैठ सके। हाँ, जबले अबू कभी को ऐसे भी नजर आता होगा क्योंकि बिल्कुल सामने है वो पहाड़, ठीक है, लेकिन वहां पर या तो तन्हाई मुमकिन नहीं थी क्योंकि बिल्कुल आपके आबादी के बिल्कुल बराबर में है वो, या ये कि हो सकता है ऐसा कोई कवर्ड एरिया, कोई ऐसा गार वगैरह मौजूद नहीं था कि जहां पर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा एक एक हफ्ता जो है वहां पर काम कर सके। तो इतना दूर गए कि जहां पे तन्हाई भी थी, और दूसरी चीज क्या थी वहां पर, काबतुल्ला नजर आता था, ठीक है, तो काबतुल्ला से कितनी मोहब्बत होगी नबी अलैहिस्सलाम को, ठीक है। तो दीनी मोहब्बत है ये दुनियावी मोहब्बत नहीं है, ये तबीयी मोहब्बत नहीं है, ये दीनी मोहब्बत है। लेकिन हुक्म के सामने دینی محبت بھی قربان کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, چلے اللہ کرے آپ لوگوں نے کچھ لکھا ہو اس کو, بات کو. عجیب بات ہے, آپ لوگوں کی برکت کی وجہ سے پوائنٹس تو آ جاتے ہیں کلاس کے اندر, لیکن پھر آپ لوگ اس کو یاد نہیں رکھتے ہیں, تو پتہ نہیں یہ برکت کا کیا فائدہ ہے یا پتہ نہیں اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی وجہ سے. ہم نے تو کبھی پہلے ایسی باتیں نہیں سوچی تھیں, آپ کو پڑھاتے ہیں تو اس وقت کی باتیں وہ یا کہ آ رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن پھر آپ لوگ اس کو بھلا دیں یا آپ لوگ ہی اس سے جو ہے وہ جو فائدہ حاصل کرنا چاہیے وہ نہیں حاصل کریں, تو پھر تو ہمیں شبہ ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں برکت آپ کی ہے یا کسی اور کی برکت ہے کہ کیا. الحمدللہ پھر وہ اپنے اوپر حضرت کی تو برکت, اپنے شیخ کی برکت تو الحمدللہ وہ ہے ہی, ٹھیک ہے, لیکن پھر ہم ذرا یہ بھی کہتے ہیں بھائی جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا تو ان کی بھی ایک اخلاص ہوتا ہے, ان کی بھی ایک ہوتی ہے جس کی وجہ سے ٹیچر کے دل میں اللہ تعالیٰ باتیں ڈال دیتے ہیں, لیکن اس کے اوپر شبہ ہونے لگتا ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ شیخ کی برکت کے اوپر شبہ نہیں ہوتا, اسٹوڈنٹس والی برکت کے اوپر پھر شبہ ہونے لگتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے ویسے یہاں پر. چلے آگے چلتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, ابن حبان اور حاکم وغیرہ نے روایت کیا ہے اور ترمذی نے اس کو حسن فرمایا ہے. ٹھیک ہے, یعنی حسن حدیث کے درجے پر ہے. روایت یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ پہلی آیت ہے جو قتال کفار کے معاملے میں نازل ہوئی, جبکہ اس سے پہلے 70 سے زیادہ آیتوں میں قتال کو ممنوع قرار دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, یعنی 70 سے زیادہ کا مطلب ہے کہ بہت بڑی تعداد میں, کوئی 70 کاؤنٹ نہیں کر رہا ہوتا بیٹھ کر کے جی 70 ہو گئے اور پھر 700 ہو گئے اور یہ, بلکہ 70 اور 700 ہم نے مشائخ سے سنا کہ اس کا عربی زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے سینکڑوں یا بہتیروں یا بہت زیادہ بڑی تعداد. ٹھیک ہے, تو بڑی تعداد میں آیتوں میں قتال کو ممنوع کرا دیا گیا تھا. اچھا, تو ممنوع کرا دیا گیا تھا صبر کی تربیت. ٹھیک ہے, صحابہ کرام کی جو ہے وہ صبر و تحمل کی, برداشت کی جو ہے نا وہ تربیت ہو رہی تھی, کیونکہ ان لوگوں نے پھر آ کے جا کر کے امامت کا کام انجام دینا تھا. ٹھیک ہے, امامت کا کام, مدینہ منورہ میں بھی صحابہ کرام تھے, ان کی یہ والی تربیت نہیں ہوئی جو مکہ مکرمہ والوں کی ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بتایا تھا جس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں نیریٹ کیا کہ الامامت للقریش, یا او کا مقالہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ امامت جو ہے نا یہ تو قریش کے لیے ہے. ٹھیک ہے نا, باقی لوگ جو ہے وہ امام نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے جو خلفائے راشدین تھے اور پھر ایون بعد میں بھی ابن یہ جو بنو عباس کا جو چلا اور بنو امیہ کا جو سلسلہ چلا, یہ سارا کا سارا قریشی لوگ. ٹھیک ہے نا, اور قریشی جو تھے وہ مکہ مکرمہ کے اندر ان کی ایسے تربیت ہوئی تھی. تو امامت کے لیے جو ہے نا وہ ایک ایکسٹرا لیول آف تربیت کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے آج کل کے کافروں کے بھی علاقوں کے اندر آپ دیکھیں تو ان کے جو جو جو, جو بڑے ہوتے ہیں نا ان کی ایک الگ طریقے سے تربیت ہوتی ہے, وہ پبلک سکول سسٹم کے اندر ان کو ڈال کر کے ان کی تربیت نہیں کری جا رہی ہوتی. ٹھیک ہے, ایلیٹ کلاس جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں ایلیٹ کلاس جو ہے نا تو اس کی تربیت کہاں ہوتی ہے, HSN اسکول لاہور کے اندر اس کی تربیت ہوتی ہے, اور جو ہے وہ کراچی گرامر اسکول کے اندر اس کی تربیت ہوتی ہے نا. کیا تربیت ہوتی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں, جو کہ پھر وہ ملک کے ساتھ کرتے ہیں, ہمارے ساتھ کرتے ہیں وہ. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ہماری بھی تمنا یہی ہے کہ کاش ہم بھی ایلیٹ کلاس میں ہوتے ہیں نا, تو ہم اپنی تمنا کو ختم کریں تو اللہ تعالیٰ اس ایلیٹ کلاس کو ہمارے اوپر سے ہٹا بھی دیں گے, لیکن ہماری تمنا نہیں ختم ہوتی تو یہ ایلیٹ کلاس بھی ختم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یہ تو اللہ کا نظام ہے بھائی. چلیں آگے چلتے ہیں کہ جہاد و قتال کی ایک حکمت. فرماتے ہیں کہ ولو لا دفع اللہ الناس, کہ اگر اللہ تعالیٰ دفع نہ کرتا انسانوں کو, ٹھیک ہے, دوسرے انسانوں کے ذریعے سے, تو اس میں جہاد و قتال کی حکمت کا اور اس کا بیان ہے کہ یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے, پچھلے انبیاء اور ان کی امتوں کو بھی قتال کفار کے احکام دیے گئے ہیں, اور اگر ایسا نہ کیا جاتا, لیکن پچھلے انبیاء اور ان کی امتوں کو, تو یہ جو قتال ہے نا یہ تو سب سے مشکل کام ہے نا, یعنی اس میں تو آگے سے تلوار آ رہی ہوتی ہے جو کہ آپ کا سر اڑا سکتی ہے, آپ کے کندھے کو کاٹ سکتی ہے, آپ کی آنکھ کے اندر جو ہے وہ تیر آ کر کے لگ سکتا ہے نا. وہ احد کا واقعہ پڑھ رہے تھے سیرت کلاس میں بچوں والی, تو ایک صاحب ہی تھے نا جن کو تیر آ کر کے لگا آنکھ میں, ہے نا, اور آنکھ کا جو ہے نا وہ ایسے سائڈ پہ لگا ہوگا کہ آنکھ کے اندر پیئرس نہیں کیا بلکہ آنکھ کا جو بال ہوتی ہے نا وہ رولڈ آؤٹ, باہر نکل آئی وہ بال, اور وہ ہاتھ میں لے کر کے نبی علیہ السلام کے پاس آنے گئے, اللہ کے نبی یہ ہو گیا میرے ساتھ, हालांकि नबी ने उनके साथ एक खसूसी मामला फरमाया कि उस बॉल को जो है वापस रखा, अपना लोहा दहन लगाया और उनकी आंख जो है वो दूसरी आंख से भी ज्यादा अच्छी हो गई। तो जिहाद कताल के अंदर तो ये सब कुछ हो सकता है ना। सर के ऊपर तलवार पड़ रही है, जरा सर के ऊपर हमें एक डंडा पड़ जाए ना, हल्का सा तकिया भी अगर कोई हमारे सर पे मार दे ना तो हमारा दिमाग घूम जाता है ना। और कताल के अंदर क्या होता है, नेजा भी सर पे पड़ सकता है, तलवार, तीर, सब कुछ पड़ सकता है। ठीक है, तो ये कोई आसान हुक्म तो नहीं होता ना कि अच्छा वैसे तो ये लड़ते थे, पहले भी लड़ते थे, ये कोई थोड़ी है कि तलवार तीर से डरते थे, है ना। लेकिन उस किताल में और इस किताल में जमीन आसमान का फर्क था। आपसे हम सवाल पूछेंगे तो आपने वही जवाब देना है, वो अल्लाह के लिए नहीं था, ये अल्लाह के लिए था। नहीं, ये भाई ये जब ये सवाल की थोड़ी है, वो अल्लाह के लिए था, ये अल्लाह के लिए था, ये फर्क नहीं। यहाँ पे रेलेवेंट फर्क क्या है, यहाँ पे कौन सी बात है जो कि रेलेवेंट है उस यानी किताल की सिग्निफिकेंस को बताने के लिए। ठीक है, खैर मुझसे खुद सवाल ही एक्चुअली वर्ड नहीं किया जाएगा तो फिर आप जवाब कहाँ से देंगे। तो हम खुद ही बता देते हैं कि जो जहन में बात आई है वो ये है कि पहले जो ये किताल किया करते थे ना, वो किताल करते थे किसी ऐसी चीज की मोहब्बत में जो उनको बहुत अजीज थी, जैसे कि अपने घर की मोहब्बत। कोई उनके घर के ऊपर हमला करता था तो घर की मोहब्बत, फैमिली की मोहब्बत, बीवी बच्चे की मोहब्बत, शहर की मोहब्बत, किले की मोहब्बत, इसके लिए फिर वो लड़ते थे। उस वक्त ना तीर का खौफ, ना तलवार का खौफ, ना नेजे का खौफ। ठीक है, तो इस मोहब्बत के लिए लड़ते थे। और जो है वो कभी जो है वो सिर्फ किसी किसी घर की मोहब्बत नहीं, किसी बीवी बच्चे की मोहब्बत नहीं, बल्कि सिर्फ अपने नफ्स की मोहब्बत। मैं है ना, मैं जो हूं ना, इसने मुझे कैसे ये कर दिया, मेरे यानी मुझे कैसे ललकारा इसने, इसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बात का इनकार करे। लड़ पड़े, आगे तीर भी है, आगे नेजा भी है, तलवार भी है, बिल्कुल खौफ नहीं है, बस मैं की खातिर। ये जो मैं की मोहब्बत होती है ना, नफ्स की मोहब्बत, ये तो घर बार की मोहब्बत से भी ज्यादा बड़ी होती है। ठीक है, तो लड़ना कोई ये नहीं था कि ये कोई हमारी तरह के लोग थे कि जिनको तीर चलाना नहीं आता था, तलवार से खौफ आता था, थर थर कांपते रहते थे, तो अब अल्लाह ताला उनको जब ये हुक्म दे रहे हैं तो हिकमतें समझा रहे हैं कि नहीं, हिकमत है, बड़ा फायदा होगा तुम्हें, तुम जो है ना वो लड़ाई करो, तुम्हें बड़ा फायदा होगा इससे, इस वजह से हिकमतें समझा रहे हैं। नहीं, बल्कि क्या फर्क था, ये लोग डरपोक लोग नहीं थे, बहुत बहादुर थे। फर्क ये था कि पहले इनकी मोहब्बत जो थी ना, वो फिजिकली परसीवेबल चीजों के साथ थी। अपना जो नफ्स होता है ना, वो इंसान मुस्तकिल उसको फील कर रहा होता है। ठीक है ना, अपने अंदर की अनानियत, अपनी अपनी मोहब्बत है ना, ये तो मुस्तकिल की एक महसूस चीज होती है, समथिंग दैट कैन बी फेल्ट। ठीक है ना, तो अपने नफ्स की मोहब्बत की वजह से यानी ना तलवार का खौफ, ना तीर का खौफ, ना नेजे का खौफ। ठीक है ना, अपने फिर दूसरे दर्जे पे के ऊपर अपने घर की मोहब्बत, अपने बीवी बच्चों की मोहब्बत, ना नेजे का खौफ, ना तलवार का खौफ, ना तीर का खौफ। अब जो लड़ाई की बात हो रही है, अब जो लड़ाई की बात हो रही है ना, जिसकी उनको इजाजत दी गई है, ये कौन सी वाली लड़ाई है, ये ना नफ्स के लिए है, ना ये बीवी बच्चों के लिए है, ना ये घर के लिए है, ना ये माल के लिए है, बल्कि ये किसके लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है, अल्लाह के रसूल के लिए है, और एक आइडियोलॉजी के लिए है, एक सोच के लिए है, जो सोच इनको दीन से मिलती है, कुरान से मिलती है। ठीक है, तो इस सोच के ऊपर इनको खड़ा करने के लिए, इनके पैर जमाने के लिए, इनको जो है वो यानी नेजे, तीर और बंदूकें और इन सब चीजों के सामने खड़ा कर देने के लिए अल्लाह ताला ये हिकमतें बयान फरमा रहे हैं। ठीक है ना, डरपोकों को बहादुर बनाने के लिए नहीं, बल्कि बहादुरों को अब एक मुख्तलिफ नीयत से लड़ने के लिए ये हिकमतें बयान की जा रही है। ठीक है, हजरत मेहदी अलैहिस अलैहि रिजवान भी कुरैश से होंगे, सुन हदीसें जो है उनमें तो यही लिखा हुआ है काफी जी, बिल्डिंग एन आइडियोलॉजिकल केस। ठीक है ना, पहले जो था ना वो बड़ा फिजिकल केस था इनके पास, जिससे जिसकी वजह से वो लोग लड़ा करते थे। अब वो फिजिकल केस खत्म हो गया, अब तो सारा का सारा एक आइडियोलॉजी, ठीक है ना। तो ठीक है, मतलब जो पॉइंट समझाना चाह रहा था वो ये था कि डरपोक लोग नहीं थे, कि इनको जो है ना वो हिकमतें देनी पड़ रही है लड़ने के लिए। अच्छा, तो हिकमत बता रहे हैं कि जिहाद कताल के हिकमत का, और इसका बयान ये है कि ये कोई नया हुक्म नहीं है, ठीक है। जैसे रोजा भी एक मुश्किल चीज है, ठीक है ना। अब हमारे लिए तो मुश्किल नहीं है, माशाल्लाह एयर कंडीशन के अंदर बैठे हुए हैं, या अगर दफ्तर भी जाते हैं तो एसी गाड़ी में बैठ करके जो है वो एसी वाले दफ्तर में चले जाते हैं, है ना। तो हमारे लिए तो रोजा मतलब, हाँ उनके लिए मुश्किल है जिनको बहुत ज्यादा चुगने की आदत होती है, चुगने की आदत होती है ना जिन लोगों को बहुत ज्यादा। थोड़ी बहुत आदत तो हम मतलब माफ करें, कन्फेशन करनी कर लेनी चाहिए, हमें भी है, ठीक है। तो लेकिन हमारे लिए रोजा अलहमदुल्ला बड़ा आसान है, अल्लाह का शुक्र। तो भाई रोजा मुश्किल चीज था उन लोगों के लिए जो कि सख्त चिलचिलाती धूप के अंदर बाहर के काम कर रहे होते थे, है ना। और उनके लिए जो है ना वो ये यानी बिल्कुल भूख प्यास सब कुछ छोड़ देना, ठीक है। ये कोई कमजोर लोग नहीं थे कि इनके लिए जो है वो कोई नहीं खाएंगे तो कुछ और हो जाएगा, उनको मजबूत लोग होते थे, ठीक है। लेकिन काम काज चल रहे होते थे, तकलीफें चल रही होती थी, सब कुछ चल रहा होता था, और फिर उस हालत में रोजा रखना। तो रोजा भी एक ऐसा हुक्म था जिसके लिए नबी, जिसके लिए अल्लाह ताला ने क्या हुक्म फरमाया, या अय्युहल लजीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल लजीना मिन कब्लिकुम, है ना। तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पिछली उम्मतों के ऊपर रोजे फर्ज किए गए, ठीक है। तो रोजे से भी ज्यादा मुश्किल हुक्म कताल का हुक्म, एक आइडियोलॉजी की खातिर कताल का हुक्म, ठीक है। तो उसको भी फिर हिकमतों के जरिए से समझाया कि भाई ये कोई नया हुक्म नहीं है, पिछले अंबिया और उनकी उम्मतों को भी कताल कुफार के अहकाम दिए गए हैं, ठीक है। यानी तुम जिन अंबिया के साथ अपने आप को एफिलिएट करते हो और जानते हो कि हाँ भाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तुम औलाद में से भी हो और तुम उनके दीन के ऊपर भी चलना पसंद करते हो, तो भाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम और जो है वो उनकी जो औलादें थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस तरफ से जो बनी इसराइल वाली औलादें थी, तो उन सबके ऊपर कताल फर्ज किया गया था, ठीक है। और फिर अब हिकमत बता रहे हैं कि ऐसा ना किया जाता तो किसी मजहब और दीन की खैर नहीं थी, सारे ही दीन और मजहब और उनकी इबादत गाहें ढा दी जाती, ठीक है। तो अगर तुम ये वाला काम नहीं करोगे तो तुम्हारी इबादत गाहें वगैरह भी जो है ना वो भी ढा दी जाएंगी। लहुद्दिमत सवामिउ वबियउ वसलावातु व मसाजिद, के जितने अहकाम, जितने दीन और मजहब दुनिया में ऐसे हुए हैं कि किसी जमाने में उनकी असल बुनियाद अल्लाह की तरफ से और वही के जरिए से कायम हुई थी, फिर वो मनसूख हो गए और उनमें तहरीफ होकर कुफर और शिर्क में तब्दील हो गए, मगर अपने अपने वक्त में वही हक थे, उन सब की इबादत गाहों का इस आयत में जिक्र फरमाया है, क्योंकि अपने अपने वक्त में उनकी इबादत गाहों का एहतराम और हिफाजत फर्ज थी। उन मजाहिब के इबादत खानों का जिक्र नहीं फरमाया कि जिनकी बुनियाद किसी वक्त भी नबूवत और वही इलाही पर नहीं थी, जैसे आतिशपरस्त मजूस या बुत परस्त हिंदू, आतिशपरस्त मजूस या बुत परस्त हिंदू, क्योंकि उनके इबादत खाने किसी वक्त भी काबिल एहतराम नहीं थे, ठीक है। तो अब बहरहाल ये तफसील इसमें भी की जा सकती है कि बुनियाद तो हर दीन की अल्लाह की इबादत ही थी और अभी भी है, ठीक है, बुनियाद। लेकिन बुनियाद जो है ना उसमें भी तो फिर तफसील है ना कि बुनियाद कितनी बड़ी बुनियाद, हाउ मच ऑफ द बुनियाद इज स्टिल लेफ्ट, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने शायद सुना होगा, हदीसे मुबारका से भी ये बात पता चलती है और मॉडर्न साइंस से भी पता चलती है कि हदीस मुबारक से तो ये पता चलती है कि अल्लाह ताला जो है ना वो जो रीढ़ की हड्डी का जो बिल्कुल सिरा होगा ना, उससे इंसान को बनाएंगे जब सूर दूसरी वाली सूर फूकी जाएगी, ठीक है। और मॉडर्न साइंस क्या कहती है, डीएनए सेल के अंदर सब कुछ मौजूद है, तो उससे जो है ना वो एक इंसान जो है वो दोबारा से तख्लीक किया जा सकता है। डीएनए के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है इंसान के बारे में, ठीक है। तो भाई एक इंसान की बुनियाद, फिजिकल बुनियाद क्या हुई, डीएनए सेल, ठीक है ना। लेकिन एक इंसान जो कि एक जीता जागता जिंदा इंसान है, ठीक है, तो अब इसकी जो बुनियाद है वो कम से कम बुनियाद डीएनए सेल है, और ज्यादा से ज्यादा बुनियाद इसकी क्या हो सकती है, इसका पूरा पूरा जिस्म, ठीक है ना, जो कि माँ के पेट में यानी 4 महीने के अंदर पूरा का पूरा जिस्म ऐसा बन जाता है कि उसके अंदर फिर फरिश्ता आकर के रूह फूंकता है और फिर वो एक जीता जाता जागता इंसान बन जाता है, ठीक है। तो पूरा जिस्म ये भी बुनियाद हुई, और सिर्फ एक सेल ये भी बुनियाद हुई, ठीक है ना। तो बुनियाद के बड़े होने में और बुनियाद के छोटे होने में फर्क है ना, है तो दोनों बुनियादें, पूरा जिस्म ये भी बुनियाद है और सिर्फ डीएनए सेल ये भी बुनियाद है, और आधा जिस्म ये भी कह सकते हैं कि भी ये भी आधी बुनियाद है, ठीक है। तो उसी तरीके से जितने भी मजहब इस दुनिया में मौजूद है ना, इन सब की बुनियाद जो है वो तो दीन इस्लाम ही है, लेकिन कितना ज्यादा उनको मस्ख कर दिया गया है, हाउ मच ऑफ देम हैज बिन मॉडिफाइड और हैज बिन मैनिपुलेटेड विद, ठीक है। बुत परस्ती और मजूसियत, फायर वर्शिपिंग या जिनको माजियंस कहते हैं, ठीक है, तो ये लोग जो हैं इनकी 99% जो है वो मस्ख हो चुका है, 99% मस्ख हो चुका है, हम एक अंदाज कह सकते हैं, ठीक है ना। 1% रह गया है, क्या मतलब कि जब इनके ऊपर मुसीबत आती है ना, तो ये मुखलिसीन अलाहुद्दीन, दअवुल्लाह मुखलिसीन अलाहुद्दीन, ठीक है ना। एक मुशरिक भी, अल्लाह का कलाम ये फरमाता है कि एक मुशरिक भी जब दुनियावी मुसीबत के अंदर फंसता है ना, तो वो अपने दीन को खालिस अल्लाह के लिए करते हुए अल्लाह को पुकारता है, क्या मतलब 1% तो इनके अंदर भी है, मुशरिकों के अंदर भी और मजूसियों के, हत्ता के एथियस जो अपने आप को कहते हैं ना, उनके अंदर भी 1% तो अल्लाह का रिकग्निशन है, लेकिन वो इतनी ज्यादा मस्त हो गई कि उनकी इबादत खाओं का हुलिया ही बिल्कुल बिगड़ गया और बिल्कुल ही सब कुछ बदल गया। जबकि जो पीपल ऑफ द बुक हैं, ज्यूज एंड क्रिश्चियंस जो हैं, इनके अंदर भी मस्त बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन इनका मस्त जो है वो 100 या 99% नहीं है, बल्कि 60% है, 70% है, कहीं पे आप कहें इवन क्रिश्चियंस के अंदर, ठीक है, कैथोलिसिज्म के अंदर मस्त जो है वो बहुत ज्यादा हुआ है, जबकि इन्हीं के अंदर अगर आप जेहोवाज विटनेस को देखें, क्रिश्चियंस के अंदर ही ये बड़ा मशहूर इनका एक फिरका है अमेरिका में बड़ा, जो है इनकी इनकी तबलीगी जमात है क्रिश्चियंस की, समझ लें द जेहोवाज विटनेस वाले, इन लोगों को आप देखें बहुत ज्यादा इनके यहाँ जो है ना वो आपको तौहीद नजर आएगी बहुत ज्यादा, हालांकि है नहीं उसमें उन्होंने मैंने किया हुआ तो है गड़बड़ बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा आपको अच्छी बातें भी नजर आएंगी। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट जो क्रिश्चियंस होते हैं, इनका तो चर्च हमारे कराची के अंदर भी मौजूद है, बल्कि हॉस्पिटल्स भी हैं इनके मौजूद, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट, इनके यहाँ भी बड़ी अच्छी खासी आपको जो है वो यानी तौहीद नजर आ जाएगी, तौहीद से मतलब मिलती जुलती चीजें, तौहीद तो खैर नहीं है इनके अंदर जाहिर है। तो ये फर्क है कि जी सवामे बेउन व सलावातुन व मसाजिद जो है ना, ये तौहीद वाला, मसाजिद तो 100% तौहीद वाला मजहब का इबादत खाना होता है, और बाकी जो है ना वो 50% मस्त हो गया या 60% मस्त हो गया वगैरह, और जो 99% 95% मस्त हो गए उनका जिक्र ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, आयत में सवा, अच्छा टाइम हो गया क्लास का, तो हम अभी खत्म कर देते हैं, क्योंकि अभी कोई ऐसी बात नहीं है जिसको के मुकम्मल करके छोड़ा जाए आपको, तो इस वजह से बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे। किसी को अगर कोई इमीडिएट सवाल है अगर पूछना तो आप देखते हैं, वरना क्लास हमारी अभी खत्म। लगता है सवाल भी नहीं है, तो आखिर दावाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।